ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 9 अगस्त 2020 बरोज इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताला की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून, रू, सुनहरी मतन, इफ्सियों। इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। जवाबी मुतालिया, जबूर। ऐ खुदावंद, तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदावंद पूरे तौर पर ना जानता हो। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में बसूं, तो वहां भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबोगरीब तौर से बना हूं। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल इसे खूब जानता है। दरसीवाज बाइबल में से जबूर। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। सलातीन। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते हुए देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने इन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा, सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी, जो उस पर से गिरी पड़ती थी, उठा लिया और उल्टा फिरा और यर्दन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को, जो उस पर से गिर पड़ी थी, लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और अलीशा पार हुआ। जब अंबियाजादों ने, जो यरू में उसके मुकाबिल थे, उसे देखा तो वो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुक कर उसे सजदा किया। लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदोनवा में उसकी शोहरत फैल गई। और वो नासरत में आया, जहां उसने परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां लिखा था कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया। और जितने इबादत खाना में थे, सबकी आंखें उस पर लगी थीं। वो उनसे कहने लगा कि आज ये निविष्टा तुम्हारे सामने पूरा हुआ। मत्ती। उस वक्त यीशु गलील से यर्दन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसे जवाब दिया, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यूहन्ना। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुआवजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे कहता हूं जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदीमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है, मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ है ऐसा ही है। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लयपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। रूह की तीन अजीम सच्चाइयां कादर मुतलिक, हरजा मौजूद, अलामुल गयूब, तमाम ताकतें रखने वाला, सारी जगह को पूर करने वाला, सारी साइंस रखने वाला रूह हमेशा इस अकीदे की नफी करता है कि मादा असल हो सकता है। ये अब्दी सच्चाइयां खुदा की मुनव्वर हकीकत के तौर पर इब्तदाई वजूदियत का इजहार करती हैं, जिसमें वो सब जो उसने बनाया है उसकी नेक सीरत के बाइस वाजह होता है। हकीकी इंसान का साइंस की बदौलत अपने खालक से ताल्लुक इस्तवार करते हुए बशर को सिर्फ गुनाह से दूर होने और मसीह यानी हकीकी इंसान और खुदा के साथ उसके ताल्लुक को पाने और इलाही फर्जंदगी को पहचानने के लिए फानी खुदी से नजर हटाने की जरूरत है। मसीह यानी सच्चाई यीशु के वसीला जाहिर हुई बदन पर रूह की ताकत को साबित करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि सच्चाई बीमार को शिफा देते और गुनाह को तबाह करते हुए इंसानी अकल और बदन पर उसके असरात की बदौलत जाहिर होती है। जब तक हम आंगी और इंसान की लाफानियत ज्यादा वाजह नहीं हो जाते तब तक हम खुदा का हकीकी तसव्वुर नहीं पा सकते, और बदन इसकी अकासी करेगा जो उस पर हुक्मरानी करता है, खा ये सच्चाई हो या गलती, समझ हो या अकीदा, रूह हो या मादा। लिहाजा उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा। होशियार, सादा और चौकस रहें। जो रास्ता इस फहम की जानब ले जाता है कि वहद खुदा ही जिंदगी है वो रास्ता सीधा और तंग है। ये बदन के साथ एक जंग है जिसमें गुनाह, बीमारी और मौत पर हमें फतह पानी चाहिए, खा यहाँ या इसके बाद, यकीनन इससे कबल कि हम रूह के मकसद या खुदा में जिंदगी हासिल करने तक पहुंच पाए। साकन होना और दरमियानी राह अपनाना या रूह और मादे, सच्चाई और गलती से इकट्ठे काम करने की तवक्को रखना अकलमंदी नहीं। राह है मगर सिर्फ एक, यानी खुदा और उसका ख्याल जो रूहानी हस्ती की जानब रहनुमाई करता है। बदन पर साइंसी हुक्मरानी इलाही अकल के वसीला हासिल होनी चाहिए। किसी दूसरे तरीके से बदन पर काबू पाना नामुमकिन है। इस बुनियादी नुक्ता पर कमजोर कदामत पसंदी बिल्कुल नाकाबिले तस्लीम है। سچائی پر صرف انتہائی بھروسے کے وسیلہ ہی سائنسی شفائیہ قوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جب بشر خدا اور انسان سے متعلق درست خیالات رکھتے ہیں، تخلیق کے مقاصد کی کثرت جو اس سے قبل نادیدنی تھی اب دیدنی ہو جائے گی۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ زندگی روح ہے، نہ کبھی مادے کا اور نہ کبھی مادے میں، یہ ادراک خدا میں سب کچھ اچھا پاتے ہوئے اور کسی دوسرے شعور کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے خود کاملیت کی طرف وسیع ہوگا۔ روح اور اس کی اصلاحات ہستی کے واحد عقائد ہیں۔ مادہ روح کی خوردبین تلے غائب ہو جاتا ہے، گناہ سچائی کے وسیلہ ناگزیر ہے، اور بیماری اور موت پر یسوع نے فتح پائی جس نے انہیں غلطی کی اشکال ثابت کیا۔ روحانی زندگی اور برکت ہی واحد ثبوت ہیں جن کے وسیلہ ہم حقیقی وجودیت کو پہچان سکتے اور ناقابل بیان امن کو محسوس کرتے ہیں جو سب جذب کرنے والی روحانی محبت سے نکلتا ہے۔ مادے کی حس کا جھوٹا ثبوت نہایت مؤثر انداز سے روح کی گواہی کی مخالفت کرتا ہے۔ مادے کی حس خود کی آواز کو حقیقت کی شدت کے ساتھ اونچا کرتی اور کہتی ہے، میں مکمل طور پر بے ایمان ہوں اور انسان یہ جانتا ہے۔ میں دھوکہ دے سکتی، جھوٹ بول سکتی، زناکاری کر سکتی، چوری کر سکتی، قتل کر سکتی اور نرم لہجے کی کمینگی کے ذریعے سراغ رسانی سے بچ سکتی ہوں۔ خواہش میں حیوان، جذبے میں فریبی، مقصد میں مکار، میرا مطلب میری زندگی کے مختصر دورانیے کو ایک جشن کا دن بناتے ہوئے، گناہ کس قدر اچھی چیز ہے، جہاں نیک ارادہ منتظر ہوتا ہے وہاں گناہ کیسے کامیاب ہوتا ہے، یہ دنیا میری بادشاہت ہے، میں مادے کی خوبصورتی پر تخت نشین ہوں، مگر خدا کی ایک چھون، ایک حادثہ، خدا کی شریعت کسی بھی لمحے میرا سکون فنا کر سکتی ہے، کیونکہ میری سب خیالی خوشیاں مہلک ہیں، مگر میری بدقسمتی کھولتے لاوا کی مانند میں بھرتا ہوں اور راکھ کرنے والی آگ کی عظمت کے ساتھ چمکتا ہوں۔ روح مخالف گواہی دیتے ہوئے کہتی ہے، میں روح ہوں، انسان جس کے حواس روحانی ہے میری صورت پر ہے، وہ لافانی فہم کی عکاسی کرتا ہے کیونکہ میں لافانی ہوں، پاکیزگی کی خوبصورتی، وجود کی کاملیت، ناقابل تسخیر جلال سب میرے ہیں کیونکہ میں خدا ہوں، میں انسان کو لافانیت دیتا ہوں کیونکہ میں سچائی ہوں، میں تمام تر نعمتیں شامل کرتا اور عطا کرتا ہوں کیونکہ میں محبت ہوں، میں ازل اور ابد سے مبرہ زندگی دیتا ہوں کیونکہ میں زندگی ہوں، میں اعلیٰ ہوں اور سب کچھ عطا کرتا ہوں کیونکہ میں شعور ہوں، میں ہر چیز کا مواد ہوں کیونکہ میں جو ہوں سو میں ہوں۔ ابدی سچائی اسے تباہ کرتی ہے جو بشر کو غلطی سے سیکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور بطور خدا کے فرزند انسان کی حقیقت روشنی میں آتی ہے۔ ظاہر کی گئی سچائی ابدی زندگی ہے۔ بشر جب تک یہ نہیں سیکھتا کہ خدا ہی واحد زندگی ہے، وہ غلطی کے عارضی ملبے، گناہ، بیماری اور موت کے عقیدے سے کبھی باہر نہیں آ سکتا۔ بدن میں زندگی اور احساس اس فہم کے تحت فتح کیے جانے چاہیے جو انسان کو خدا کی شبیہ بناتا ہے، پھر روح بدن پر فتح مند ہوگی۔ عقل جسمانی حواس کی مالک ہے اور بیماری، گناہ اور موت کو فتح کر سکتی ہے۔ اس خدا داد اختیار کی مشق کریں، اپنے بدن کی ملکیت رکھیں اور اس کے احساس اور عمل پر حکمرانی کریں۔ روح کی قوت میں بیدار ہوں اور وہ سب جو بھلائی جیسا نہیں اسے مسترد کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس قابل بنایا ہے اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔